ओम शांति। 17 मई 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, शाम को 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं। इसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट और यूट्यूब लाइव का लिंक दिया हुआ है, जिससे भी आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। दोनों लिंक चारों समय रोजाना के लिए एक ही रहते हैं। यदि जुड़ने में आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई सुझाव है तो वो भी आप दे सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का साथ मीठा मीठा बाबा कैसे मीठी बच्ची। अपने आप को देखो, स्वयं को देखो, मैं फूल बना हूं। फूल किसे कहते हैं? हाँ जी, किचन में तो रहता है, पर तो फूल किसे कहते हैं कौन बताएगा? फूल किसे कहते हैं? हाँ जी, जो दूसरों को दुख देता है उसे फूल कहेंगे। हाँ जी, जो पवित्र होता है उसे फूल कहते हैं। मेरे को तो ऐसी कोई विशेषता फूल में नहीं दिखाई दे रही। बाबा आए हैं हमें गुल गुल बनाने, फूल बनाने, क्या मतलब है? हमें कोई पेड़ पौधे पर चिपका देंगे क्या? सुगंध देने वाला, फूल से सुगंध आती है, और फूल से और क्या आता है? सुगंध आती है बस, खुशबू आती है, और कुछ भी आता है फूल से? क्या आती है? खुशी। बहुत अच्छा लगता है, सुंदर होते हैं ना, खुशी भी आती है, सुगंध भी आती है। जिससे सुगंध आती हो, खुशी आती हो, और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी, कुछ फूल तो खैर खराब होते हैं, हानिकारक भी होते हैं, व्यर्थ भी होते हैं। हाँ जी, हाँ, फूल फूल जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे होते हैं। उनका रस, जैसे हमारा गुलाब जल, इसी प्रकार से इतर रस निकाले जाते हैं जो जो हमारे दवाइयों के रूप में भी काम आते हैं। हार श्रृंगार का फूल है या जो भी, पर जो अच्छे फूल हैं उनके लिए इत्र केवड़ा भी बनाया जाता है, जो हमारे वातावरण को बहुत सुगंधित खुशबूदार कर देता है। खुशबूदार फूल का मतलब होता है सबको अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, जहाँ सब आराम महसूस करते हैं, सुख महसूस करते हैं। तो फूल बनना माना सुख देने वाला। हाँ जी,
फूलों में सार भी होता है,
रस होता है ना, मतलब जो इत्र के रूप, जो इत्र के रूप में हम यूज करते हैं वो फूलों का निचोड़ होता है ना, रस होता है ना। गुलाब का जल बनाते हैं तो गुलाब का रस उसमें से आ जाता है, तो वो जहाँ भी गुलाब जल से रखते हैं तो वहाँ वो अपनी खुशबू फैला देते हैं। तो खुशबू सबको अच्छी लगती है, बैठना भी अच्छा लगता है, रहना भी अच्छा लगता है, और वो हमारी दवाई के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं। तो हमारे लिए वो सुखदायी है, वो किसी प्रकार का चुभते नहीं, कांटे जो है वो चुभते हैं, दुख देते हैं। और गुलाब के फूल के साथ कांटे होते हैं, दिखाते हैं, मतलब कहने का मतलब हमें समझने वाला है कि फूल सुख देने वाला होता है। मैं सुख, हाँ जी, हाँ, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, क्योंकि आप फूल पौधों की देखभाल ज्यादा करते हो ना, तो आप वहां से सारी ऊर्जा लेकर के भर रख सकते हैं। मैं फूल बना, मैं सबको सुख देने वाला, खुशबू देने वाला बना। देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता, दुख देने वाला तो नहीं बनता, क्योंकि जब भी कोई किसी को दुख देता है तो देह अहंकार में आकर ही देता है। कभी भी आत्मा कभी किसी को दुख देने का संकल्प नहीं करती। देह में आ जाती है हद में, ये मेरा है और ये तेरा। जैसे ही मेरा तेरा हुआ और वहां दुख शुरू हो जाता, फिर उसका व्यवहार एकदम ऐसा हो जाता है कहीं ना कहीं वो किसी को चुभे, किसी ना किसी व्यवहार में वो दुख देगा, क्योंकि देह अहंकार हमें हद में ले आता है। हद में आने के कारण दुख देने वाले काम करते। तो बाबा कहते कहीं देह अहंकार तो नहीं है। बाप आया है तुम्हें कांटों से फूल बना, तुम जो दूसरे को दुख देने वाले बने हुए हो, तुमने 84 जन्म लेते लेते अपने आप को आत्मा से देह समझ लिया है। देह समझ कर आप सब एक दूसरे को दुख देने वाले बन गए हो। अब तुम दोबारा से अपने आप को आत्मा समझ लो तो आप सुख देने वाले बन गए, क्योंकि जब आत्मा समझेंगे तो आपकी बुद्धि में यह आएगा, ये सब आत्माएं मेरे बाप के बच्चे, मेरे भाई। जब हम भाई हैं फिर हम लड़ाई क्यों करें। और फिर इसके साथ हमें एक बात और समझ में आ जाती है, आत्मा समझने के साथ, कि इस संसार में आने के बाद मैंने जो जो जिनको दिया है, सुख दिया है या दुख दिया है, घर जाने से पहले उसे मैंने पूरा करके ही जाना। बिना पूरा किए मैं घर जा नहीं सकता, ये बात अच्छी तरह समझ ले। कोई मुझे दुख क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने उसे दुख दिया हुआ है। कोई मुझे सुख क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने उसे सुख दिया हुआ है। जितना मैंने उनको सुख व दुख दिया है वो तो मुझे जरूर देंगे, अच्छी बात है, हिसाब बराबर हो रहा है। बिना हिसाब बराबर किए मैं घर जा नहीं सकता। दे दे भाई, जल्दी जल्दी दे दे, जितना तुम्हें दुख देना है दे दे, आखिरी हिसाब तो बराबर होगा। तेरी भी जान छूटेगी और मेरी भी जान छूटेगी, झगड़ा किस बात का। तो दुख दे रहा है इसलिए तो दे रहा है क्योंकि मैंने तेरे को दिया हुआ है। सुख दे रहा है तो इसलिए तो दे रहा है क्योंकि मैंने तेरे को दिया हुआ है। हमने किसी की तरफ आकर्षित नहीं होना, हमने किसी की तरफ नफरत भी नहीं करनी। हम इस अवस्था में जब आ जाते हैं तब हम फूल बनना शुरू होते हैं। जब तक ये हमारी अवस्था नहीं होती तब तक हम फूल नहीं बनते। ये समझ में आ गया जो कुछ भी हो रहा है सब बराबर हो रहा है, अब मैंने किसी को दुख नहीं देना, क्योंकि मैंने दुख दिया तो मुझे परमात्मा माफ भी करने वाला, कोई और तो क्या माफ करेगा, परमात्मा भी मुझे उससे नहीं बचा सकता। फिर तो मैं किसी को दुख ना दूं, फिर तो मैं किसी को दुख ना दूं ना, मैं सबको सुख दूं। ये बात हमारे जीवन में आ जाए तब हमें बाबा की डायरेक्शन पर चलकर कांटे से फूल बनते। यही डायरेक्शन है, यही पढ़ाई है, यही शिक्षा है, यही सारी सारी देना सिरदर्दी बाबा हमारे लिए करते हैं। हमें आके रोज आना, इतना पढ़ाते हैं, इतना समझाते हैं कि भाई तुम फूल बन, कोई तुम्हें कुछ भी दे परंतु तुमने उसको सुख देना। जो तो को काटे बोए तू वो वापस, तुमने उसके लिए फूल बोने, बस उसके कांटे उसके लिए त्रिशूल बनेंगे परंतु तुम्हारे फूल, तुम्हें फूल ही मिलेंगे। जो उसने कांटे बोए हैं वो उसको त्रिशूल मिलेंगे, परंतु तुमने फूल बोए हैं तो तुम्हें अपने फूल ही मिलेंगे। तुम्हें किसी के कांटे मिल नहीं सकते, किसी के कारण, किसी के कर्म का फल तुम्हें मिल नहीं सकता। ये बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, आपकी माँ के, आपके बाप के, आपके पति के, आपके भाई के, आपके बच्चे के, किसी के भी कर्म का फल आपको नहीं मिलता, चाहे वो अच्छा है तो चाहे वो बुरा। तो ये भी हमारे को फूल बनाने में मदद करती है। और ये बातें समझने वाली है, ये बातें समझ में आ जाए तो हम कांटे से फूल बन सकते। इतनी सी बात हमें अपने जीवन में लाने का प्रयास, कर्मों की गति समझ में आ जाए ना तो बहुत इजी हो जाता है कांटे से फूल। और ये बात आप किसी को भी समझाएंगे वो बहुत जल्दी स्वीकार कर लेगा कि हाँ ये बात आपकी बिल्कुल ठीक। अज्ञानी आत्मा भी इस बात को बहुत जल्दी समझ लेती, क्योंकि जहां भी मैं संसार भूमि या डेथ के कहीं भी जाना होता है वहां वहां ये बात कर्मों की गति उनको बहुत जरूरी समझाता है। बाकी कौन आत्माएं समझ पाती हैं कौन आत्माएं नहीं समझ पाती वो उनका अपना पार्ट है, परंतु ये कर्मों की गति जिसको समझ में आ गई वो अवश्य जो है ना फूल बनने की कोशिश करेगा। जब मुझे माफी नहीं मिल सकती तो मुझे तो सुख चाहिए, कोई नहीं चाहता दुख लेना, तो मुझे दुख देना रुकना होगा। तो मैं लास्ट में उसे ये क्वेश्चन भी पूछता हूँ, मुझे बताओ परमात्मा का ये फार्मूला राइट है या नहीं? ये जो परमात्मा ने आके हमें समझाया है ये गलत है या सही है, सभी की तरफ से ये जवाब मिलता है ये फार्मूला राइट। प्रश्न, किस निश्चय के आधार पर बाप से अटूट प्यार है? किस निश्चय के आधार पर बाप से अटूट प्यार, हमारे प्यार में जरा भी टूट ना आए। टूट आने का मतलब क्या है? लगातार निरंतर। कौन सी बात का हमें निश्चय हो जाए तो हम लगातार परमात्मा की डायरेक्शन पर चलकर हर काम कर सकते, हमारा प्यार हो जाएगा परमात्मा। सिर्फ एक बात का हमें निश्चय हो जाए तो हम फिर बाबा की श्रीमत पर चलना छोड़ नहीं सकते। फिर कोई कहे कि बाबा से प्यार ना करो, हम उसे कहेंगे मुझे बताओ कैसे प्यार ना, मुझे बताओ कैसे प्यार ना करूं, हमारा प्यार टूट ही नहीं सकता। पहले अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाप से प्यार करें। ये भी अटूट निश्चय चाहिए कि निराकार बाप इस भागी रथ पर विराजमान। पहला निश्चय मैं आत्मा, दूसरा निश्चय इस रथ में ब्रह्मा बाबा के तन में ये मुरली सुनाने वाला, ये ज्ञान देने वाला स्वयं परम पिता परमात्मा है और कोई नहीं। मेरा भी यही था कि जब तक मुझे ये निश्चय नहीं हुआ कि वाक्य में ये भगवान आके पढ़ा रहा है तब तक मुझे ये मुरलियां और ये ज्ञान 7 days 4 कुछ भी समझ में नहीं। जिस दिन समझ में आया कि भगवान आ गया है तब इस ज्ञान को समझना शुरू किया। वे हमें इनके द्वारा पढ़ा रहा है। जब ये निश्चय टूटता है डाउट आता है, बहुत सारे भाई बहनों को ये डाउट आ जाता है ये भगवान कैसे है। डाउट आने के इतने आधार हैं मेरे पास दिखाई देते हैं और बस उनको डाउट आ गया, शंका हो जाती नहीं ये भगवान, तो प्यार कम हो जाता, तो प्यार कम हो जाता। ओम शांति। कांटे से फूल बनाने वाले भगवानोवाद वाला जो भगवान है ना वो कह रहे हैं कांटों से फूल, या बागवान उसे भगवान कहो या उसे बागवान कहो, क्योंकि फूल तो बागवान का काम होता है बनाना। भगवानोवाद, बागवान भगवानोवाद, फूल बनाने वाले भगवानोवाद। बच्चे जानते हैं कि हम यहाँ कांटे से फूल बनने के लिए आए, हम यहाँ आए ही कांटे से फूल बनने के लिए। कोई फूल बनने आया होगा? फूल फूल कौन बनना चाहता है कि मैं गुलाब का फूल बन जाऊं या बन जाऊं। सारे तोड़ फोड़ के इधर उधर रगड़ पकड़ के फेंक देते हैं, क्या जिंदगी है फूल की। भाई देवताओं पर चढ़ा दिया, दो दिन चार दिन के बाद आके उतार करके डस्टबिन में डाल देते हैं। हाँ जी,
देवता बनना,
कांटे से फूल बनना माना मनुष्य से देवता बनना, ये समझ में आ गया फिर जो है ना वो देवता। बाकी शब्द शब्दों के जाल में नहीं फंसना, सच्चाई को समझना भी बहुत जरूरी है। बनने के लिए आए, हर एक समझते हैं, पहले हम कांटे थे अब फूल बन रहे हैं। बात की महिमा तो बहुत करते हैं, पतित पावन आओ, वे वैया है, बागवान है, बाप कटेश्वर है, बहुत ही नाम कहते, इनके नाम बहुत रखे हुए, परंतु चित्र सब जगह एक ही है। उनकी महिमा भी जाते हैं, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर, सारे गुणों की विशेषता सागर के साथ मेष अथा। सागर कहने को मतलब सर अथा, जितना भी सागर में से लिया जाए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उसे सागर। इसलिए परमात्मा से कोई कितना प्रेम लेना चाहे ले लो, शांति लेना चाहे ले लो, पवित्रता लेना चाहे ले लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें प्यार की कोई कमी नहीं आती। बाकी फूल संसार का समुद्र भी खाली हो सकता है, परंतु परमात्मा का प्यार कभी खाली, परमात्मा का कोई भी गुण कभी जरा सा भी कम नहीं हो सकता। क्योंकि क्यों काम नहीं होता है परमात्मा का गुण, क्योंकि ये परमात्मा से कोई फूल रूप में जाता नहीं, ये हर आत्मा के अंदर है। परमात्मा सिर्फ ज्ञान देते हैं, रास्ता बताते हैं, और उसके आधार पर हम अपने अंदर इसको जागृत करते हैं। ये वहां से आता कुछ नहीं है, कहीं से भी प्यार हमारे पास आता नहीं। जैसे हम सवेरे सवेरे पीस ऑफ माइंड लगा लें तो वहां हमारे आर्टिस्ट ने बहुत अच्छा चित्र बना के रखा हुआ है, मैं उसे देखता हूँ कई बार, जब कभी मैं पीस ऑफ माइंड चैनल के सामने जाता हूँ, बहुत अच्छा चित्र है कि आप यहाँ से उठ करके ऊपर जा रहे हैं और वहां जाकर रुक गए हैं, आपके पास प्रेम की किरणें आ रही हैं, शांति की किरणें आ रही हैं। अब ऐसा कुछ आता नहीं, ये हमको बहुत अच्छी तरह से समझना है, ऐसा कुछ फूल हमारे पास आता नहीं, सिर्फ हमें समझ, जो हमें बाबा का ज्ञान समझ में आया है उस समझ के आधार पर हमारे अंदर वो गुण जागृत होते, प्रेम का गुण जागृत होता है। चाहे हमने चलते फिरते अपने आप को समझा दिया कि सब आत्माएं ये जो कुछ भी मेरे प्रति कर रही हैं वही बात नहीं, मैं तो इनको अच्छा दू ना, हमें बाप ने बताया है इनको अच्छा दू ना, ये बात समझा दी। चाहे चलते फिरते समझाइए, चाहे बैठ कर समझाइए, चाहे खाते पीते समझाइए, मतलब थोड़ा सा एकांत में जाकर अपने आप से बात कर ली, कोई बात बिंदी लगाओ, दोस्त ने किया किया, मेरा किया हुआ उसने दे दिया, अब मैं उसके साथ अच्छा, बस आ गया प्यार आपके पास, आपने अपने आप को बैठकर समझा दिया, सारे अपने हैं ना, कोई बात नहीं, आ गया प्यार, जहां मैंने हद लगाई ये मेरे क्या लगते, बस क्या लगते हैं एक ऐसा जहर है जो उसके साथ पाप करने के लिए हमें मजबूर कर देता है, और हम पाप कर देते हैं फिर हमारा अकल का दरवाजा बंद हो चुका होता है। ये हमने अपने आप को समझाया, हमने गलत संगत में बैठकर अपने आप को समझाया, ये मेरा क्या लगता है, बस सोच ही बदल जाती है। आज सारी दुनिया इतनी अकेली हो गई है जिसके कारण घर घर में झगड़े, घर घर में झगड़े का कारण सिर्फ ये हद है, ये मेरा है और ये तेरा, बस मेरे को आत्मक लगाना, तेरा को मेरा है। जहां गलत फहमी बैठी वहीं नर्क शुरू हो गया। जितने भी झगड़े आप देखेंगे यहीं से मिलेंगे, वो इसी बात से भरी पड़ी। अभी तुम जानते हो हम खुद एक बाप के पास बैठे, कांटे रूपी मनुष्य से अभी हम फूल रूपी देवता बनने आए। हमारा ये लक्ष्य है कि हमने सबको सुख देने वाला बनना है। सुखदेव कौन है जानते हैं? सुखदेव को कोई जानता है? कोई नहीं जानता। जिसने सुखदेव, वैसे उसका नाम सुखदेव था, ये उन्होंने सुखदेव बना दिया बाबा के से, उसका नाम सुखदेव है। क्या कहते हैं, व्यास का बेटा, व्यास ने दिया था गीता का ज्ञान, व्यास ने लिखी श्रीमद् भागवत गीता और सुखदेव ने लिखा भागवत। सुखदेव ने क्या लिखा? भागवत, सिर्फ भागवत। दोनों में क्या अंतर है? कृष्ण का जीवन चरित्र, वहां प्रेम की लीला का वर्णन, कृष्ण के मतलब जीवन का वर्णन है कि बाल अवस्था युवा अवस्था कैसे कैसे उसका जीवन चला। दोनों एकदम अलग है। और व्यास का बेटा सुखदेव, तो शिव बाबा कहते मैं हूं व्यास और तुम हो मेरे सुखदेव, मैं आया हूं तुम्हें सुख देने वाला बनाने के लिए। ठीक है, ये मुरली के शब्द, मैं हूं व्यास और तुम सब हो, तुम सबको मैं सुख देव बनाता हूं, सबको सुख देने वाला बनाता हूं। अब हर एक को अपनी दिल में देखना है, हमारी में देवी गुण है, देवता बनने वाले गुण है, मैं सर्वगुण संपन्न हूं, मेरे अंदर अभी कोई गुण की कमी तो नहीं है, यदि कोई अवगुण है तो जरूर गुण की कमी है। आगे तो देवताओं की महिमा गाते थे, अपने को कांटे समझते थे, हम निर्गुण हारे में कोई गुण ना है, आप कहीं तरस करो, क्योंकि पांच विकार हैं, देह अभिमान भी बहुत कड़ा अभिमान है। अपने को आत्मा समझे तो बाप के साथ भी बहुत प्यार रहे। अभी तुम जानते हो निराकार बाप इस रथ पर विराजमान है, ये निश्चय करते करते भी फिर निश्चय टूट पड़ता है। तुम कहते भी हो हम आए हैं शिव बाबा के पास, जो इस भागीरथ प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, हम सभी आत्माओं का बाप एक शिव बाबा है, वे इस रथ में विराजमान है, वे बिल्कुल पक्का निश्चय चाहिए, इसमें ही माया संशय में लाती है। कन्या पति के साथ शादी करती है, समझती है उनसे बहुत सुख मिलना है, परंतु सुख क्या मिलता है? शादी करने से सुख क्या मिलता है? पक से जाकर अपवित्र बनती, कुमारी है तो माँ बाप आदि सब उसको माथा टेकते हैं। क्यों क्यों माथा टेकते हैं?
पवित्र,
परंतु आजकल कन्याएं कई कई मैंने फैमिलीज देखी हैं, ब्रादरियां देखी हैं, समझो कि उनके अंदर कन्या का है वहां से पतित होके भी आई है तभी उसको माता कहते हैं। पर उनकी बुद्धि में होता है कन्या है इसको हमेशा माता कहते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि शादी के दूसरे दिन उठ करके क्या करना पड़ता है। वो कन्या नहीं रही अब उसे उठ करके सारे घर के जितने बड़े बुजुर्ग हैं सबके जाके पांव छू क्यों पांव छू उनको नहीं पता क्यों पांव छू आ रहे हैं उनको नहीं पता। बस ये बुजुर्गों ने डाल दिया कि तुम आज से पतित हो गई हो अब तुमने पांव छू। लड़का बहुत कम छूता है लड़के को कोई अधिकार है वो पतित होता ही नहीं। लड़कियों के लिए मुसीबत कि लड़की जाएगी तो दूसरे दिन शादी होते ही सबके पांव पड़ेगी मेरे को क्षमा कर दो। जब वो पाप करने वाली बन गई है अब उसके पांव छूने का मतलब क्या। ये एक अंधश्रद्धा रहती है ये बेटी है इसके हमने पांव छूने ये बहन है हमने इसके पांव छूने और जो दूसरी है उसके पांव नहीं वो बहन नहीं है। वो क्या धारणाएं थी उसके पीछे क्या सच्चाई थी उस सच्चाई से एकदम अनजान क्यों देह अभिमान आत्मा समझ ले ना स्त्री है ना पुरुष है सारे भाई भाई चेंज कर दी। क्योंकि पवित्र है बाप आदि सब माथा टेकते हैं क्योंकि पवित्र है दूसरे भी टेकेंगे। ये कन्या है जब एक क्या होती है हमारी माता जी की कंदिकें आती हैं उसमें सब कन्याओं को ढूंढ ढूंढ के पकड़ पकड़ के लाए गए जबरदस्ती प्लास्टिक की डब्बियां थालियां पकड़ा पकड़ा के आओ उनके हाथ पैर जोड़ेंगे। 8 दिन के बाद क्या हो गया उसको अनजान लड़कियों के भी पांव छूएंगे तो अब अनजान लड़की क्या हो गई है पता ही नहीं। सब माथा टेकते हैं क्योंकि पवित्र अपवित्र बनी और सबके आगे माथा टेकना शुरू कर दे। आज सब उनको माथा टेकते कल खुद माथा टेकने लगे। आज सारे माथा टेकते और शादी की पतित बनी और खुद सबको माथा टेकने और आज तक माथा टिकवाती थी और अब सबको माथा टेकने वाली बन जाती। अब तुम बच्चे संगम पर पुरुषोत्तम बन रहे हो कल कहां होंगे। आज ये घर घाट क्या है कितना गंद लगा हुआ है इसको कहा ही जाता है वैशाली। सब विष से पैदा होते तुम शिवालय में थे आज से 5,000 वर्ष पहले बहुत सुखी थे दुख का नामो निशान नहीं था अब फिर ऐसा बनने के लिए आए मनुष्यों को शिवालय का पता ही नहीं। स्वर्ग का को स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। शिव बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की बाबा तो सभी कहते हैं बाबा तो सभी कहते हैं परंतु पूछो फादर कहाँ है तो कह देते सर्वव्यापी है। परमात्मा को सब बाबा कहते हैं पिता कहते हैं परंतु उनको पूछो कहाँ है आपके पिताजी आपका बाबा कहाँ है भगवान कहाँ है क्योंकि वो कण कण में जरे जरे में कुत्ते बिल्ली कछुए मछली सब में है। हाँ जी हाँ हमारे अंदर भी है तो कितना फर्क हुआ। बाप कहते हैं तुम पुरुषोत्तम थे फिर 84 जन्म भोग कर तुम क्या बने बने हो इसलिए सब गाते हैं हे पतित पावन आओ। अभी बाप पावन बनाने आए हैं कहते हैं ये अंतिम जन्म भी पीना छोड़ो फिर भी समझते नहीं। सभी आत्माओं को बाप अब कहते हैं पवित्र बनो सब कहते भी हैं बाबा पहले आत्मा को वे बाबा याद आता फिर वे बाबा निराकार में वे बाबा साकार में ब्रह्मा बाबा निराकार में शिव बाबा। इन पतित आत्माओं को बैठ समझाती है। तुम भी पहले पवित्र थे, बाप के साथ में रहते थे, फिर तुम आए हो पाठ बजाने के लिए। बजाने इस चक्र को अच्छी रीति समझ लो। अभी हम सतयुग में नई दुनिया में जाने वाले हैं। तुम्हारी आश भी है ना कि हम स्वर्ग में जाए। तुम कहते भी थे कि कृष्ण जैसा बच्चा मिले, कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अभी मैं आया हूँ तुमको ऐसा बनाने। वहां बच्चे होते ही हैं श्री कृष्ण जैसे सतो प्रधान फूल। अभी तुम कृष्णपुरी में चलते हो, आप तो स्वर्ग के मालिक बनते हो। अपने से पूछना है हम फूल बना हूं कहां, दे अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूं। मनुष्य अपने को आत्मा समझने बदले दे समझते समझ लेते हैं। आत्मा को भूलने से बाप को भी भूल गए। बाप को बाप द्वारा ही जानने से बाप का वर्षा मिलता है। बेहद के बाप से वर्षा तो सभी को मिलता है। बेहद के बाप से वर्षा तो सभी को मिलता है। एक भी नहीं रहता जिसको वर्षा ना मिले। बाप ही आकर सबको पावन बनाते हैं, निर्वाण धाम में ले जाते हैं। ये तो कह देते हैं ज्योति ज्योत समाया, ब्रह्म में लीन हो गया, ज्ञान कुछ भी नहीं। तुम जानते हो हम किसके पास आए हैं। ये कोई मनुष्य का सत्संग नहीं है। आत्माएं परमात्मा से अलग हुई, अब उनका संग मिला है। सच्चा सच्चा ये सत्य का संग 5000 वर्ष में एक ही बार होता है। सत्युग त्रेता में तो सत्संग होता नहीं, बाकी भक्ति मार्ग में तो अनेक ढेर के ढेर सत्संग है। अब वास्तव में सत्य तो है ही एक बाप। अभी तुम उनके संग में बैठे हो। ये भी स्मृति रहे कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं और हम भगवान हमको पढ़ाते हैं। भगवान हमको पढ़ाते हैं तो भी अहो सौभाग्य, तो भी अहो सौभाग्य। हमारा बाबा यहाँ है, ये बाप टीचर फिर गुरु भी बनते हैं। तीनों ही पार्ट अभी बजा रहे हैं। बच्चों को अपना बनाते हैं। बाप कहते हैं याद से ही विकार विनाश होंगे। बाप को याद करने से ही पाप कटते हैं, फिर तुमको लाइट का ताज मिल जाता है। ये भी एक निशानी है। बाकी ऐसे